श्रोताओं नमस्कार। हमारा अगला अध्याय है बिस्मार्क की विदेश नीति। यूरोपीय इतिहास के तत्कालीन संदर्भ में बिस्मार्क की विदेश नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कि पूर्व अध्यायों में हम इसकी महत्ता को स्पष्ट कर चुके हैं, अतः यह एक अनिवार्य तथ्य हो जाता है कि हम बिस्मार्क की नीति का सुस्पष्ट और संपूर्ण अध्ययन करें। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मार्क की विदेश नीति। बिस्मार्क की विदेश नीति पर हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मार्क की विदेश नीति। 1871 में बिस्मार्क ने घोषित किया था, अब जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। इस घोषणा से उसने सबको आश्वस्त करना चाहा कि जर्मनी का विस्तार नहीं होगा। वास्तव में उसके शासनकाल में जर्मनी ने विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के आर्थिक विकास का व्यापक कार्यक्रम बनाया। उसके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने के लिए उसने यूरोप के देशों से संबंधों की एक रूपरेखा नियोजित की। 1870 से पहले शास्त्रों का और उसके बाद कूटनीतिक युद्ध बिस्मार्क ने लड़ा और दोनों विजयी रहा। इतिहासकार हर्नसा के अनुसार बड़ी बुद्धिमता और सावधानीपूर्वक बिस्मार्क जर्मनी के उत्कर्ष का प्रदर्शन करने के बजाय उसे छिपा कर रखना चाहता था। इस योजना के अनुसार उसने तय किया कि जो कि उसकी तय की गई बातें निम्न हैं। फ्रांस को इतना एकाकी बना दिया जाए कि वह सर न उठा सके और जर्मनी के हाथों हुए असमान का बदला न ले सके। इंग्लैंड और जर्मनी के हित नहीं टकराते, क्योंकि जर्मनी एक महाद्वीपीय देश है तथा इंग्लैंड औपनिवासिक साम्राज्य है। इंग्लैंड और जर्मनी दोनों ही के लिए फ्रांस शत्रुगत था। इस समीकरण के कारण भी इंग्लैंड और जर्मनी निकट आ सकते थे। इसलिए इंग्लैंड से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे जाएं और इसके लिए उपनिवेशों और नौसैनिक विस्तार से बचा जाए। दूसरा था ऑस्ट्रिया को पराजित करने और जर्मनी क्षेत्र से निष्कासित करने के बावजूद उससे निकट से संबंध रखे जाएं, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से वह जर्मनी के निकट हैं और फ्रांस का पड़ोसी होने के नाते जर्मनी के निकट नहीं रहा तो फ्रांस के निकट हो सकता है। इटली और जर्मनी का एकीकरण समांतर हुआ था, दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचा था। इसलिए इटली से मित्रता रखी जाए ताकि जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली की मित्रता से मध्य यूरोप की में दीवार बन जाए और पूरब तथा पश्चिम विशेष रूप से फ्रांस और रूस न मिल सकें। चार, रूस से जहां तक हो सके और जब तक हो सके संबंध बनाए जाए, लेकिन यदि प्रतिस्पर्धी रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी एक को चुनना हो तो निश्चित ही ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया जाए। पूर्व समस्याओं में प्रत्यक्ष हिस्सा न लिया जाए, पर यदि हो सके तो लाभ उठाया जाए। अगला हेडिंग है तीन सम्राटों का संघ। इतने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसका कारगर क्रियान्वयन बिस्मार्क ने बड़ी सूझबूझ के साथ किया। वह जानता था कि फ्रांस बहुत अपमानित हुआ है और बदला लेना भी चाहेगा, लेकिन वह आंतरिक समस्याओं में उलझे होने के कारण अकेले कुछ नहीं कर सकेगा और मित्रों की तलाश करेगा। इसलिए पहले ही उसने संभावित मित्रों से समझौता कर लिया जाए। 1871 में फ्रांस का गणतंत्र समाजवादी रास्ते पर आ रहा था। पेरिस की कम्यून में समाजवादी तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। सारे यूरोप के प्रतिक्रियावादी साम्राज्यों के लिए खतरा बन सकता था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और रूस के सम्राटों को जर्मन सम्राट के निकट लाने के लिए बर्लिन को आमंत्रित किया। 1872 में तीन सम्राटों में एक समझौता हो गया और तीनों सम्राटों का संघ बन गया। इनके बीच कोई औपचारिक संधि तो नहीं हुई, लेकिन तीनों ने तय किया कि वे समूहित रूप से यूरोप में यथास्थिति में परिवर्तन का विरोध करेंगे। उन्होंने पूर्वी समस्या में भी एक ही जैसी नीति अपनाने और क्रांतिकारी तत्वों का विरोध करने का फैसला किया। बिस्मार्क ने बड़े गर्व के साथ कहा था, मैंने वियना के रास्ते पर एक पुल बना लिया है बिना सेंट पीटर्सबर्ग वाले पुल तोड़े हैं। उसे साथ ही ऑस्ट्रिया और रूस जैसी प्रतिस्पर्धा देशों से मित्रता करने का भी गर्व था। वह यह भी जानता था कि दो पुलों पर एक साथ यातायात नहीं हो सकता और एक का टूटना अनिवार्य था, परंतु बिस्मार्क ने अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दिया। यह उसने एक तरह से नया होली अलायंस था और पहले होली अलायंस की तरह अव्यवहारिक और अस्थायी था। बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए हस्तक्षेपों से बचने की नीति निर्धारित की और ऑस्ट्रिया तथा रूस के हितों और महत्वाकांक्षाओं की प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में दोनों एक जैसी नीति किस प्रकार अपना सकते थे? जर्मनी के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था और कभी न कभी एक का पक्ष लेने की अनिवार्यता थी। इसी क्रम में 1877 में जब तुर्की और रूस में युद्ध हुआ तो संधि के लिए बर्लिन सम्मेलन बुलाया गया। वह अपनी ईमानदारी का ढिढोरा पीटने के बावजूद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। रूस द्वारा निर्मित बृहत्तर बल्गेरिया को विभाजित कर दिया गया और तुर्की के विरुद्ध युद्ध में बिना शामिल हुए ही ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविया प्रदेश दे दिए गए। रूस बुरी तरह ठग गया। उसे शिकायत थी कि बिस्मार्क ने पक्षपातपूर्ण कार्य किया है। इन घटनाओं को देखते हुए यह निश्चित था कि सम्राटों का समझौता दृढ़ नहीं होता, लेकिन बिस्मार्क ने अपने कौशल से रूस को पूरी तरह जर्मनी से अलग नहीं होने दिया। वह जानता था कि रूस अकेले होते ही वह फ्रांस के निकट जाएगा। ऐसा हुआ भी। बहरहाल बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली से संबंध दृढ़ कर लेने के बाद रूस को राजी करके तीन सम्राटों का संघ फिर से जीवित कर लिया। यह तय हुआ कि तीनों देशों में किसी एक का बाहरी देश से युद्ध हुआ तो अन्य दो तटस्थ रहेंगे। यह समझौता 3 वर्षों के लिए था। समय समाप्त होने पर फिर तीन वर्ष के लिए लागू किया गया। तब तक यूरोप में गुटबंदी स्पष्ट होने लगी। 1887 में फिर विश्वास और आश्वासन देने का एक नया दौर शुरू कर दिया गया, लेकिन जर्मनी का सम्राट महत्वाकांक्षी विलियम द्वितीय हुआ तो बिस्मार्क के लिए कार्य कर पाना असंभव हो गया और वह अलग हो गया। विलियम ने सम्राट की लीग को समाप्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रिया अन्य गुप्त संघियों के कारण जर्मनी से संबद्ध रहा, पर कुछ ही वर्षों बाद फ्रांस और रूस की मित्रता हो गई। तीन सम्राटों का संघ जितना भी अव्यवहारिक रहा हो, वह बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता का जीवंत प्रमाण था। अपने समय में बिस्मार्क ने सारी आकांक्षाओं और द्वंद्व के बावजूद रूस को बांध रखा था। साथ ही यह मानना पड़ेगा कि यह संघ यूरोप में बढ़ती गुप्त संघियों और गुटबंदी का परिणाम था। एक लक्ष्य के प्रति प्रतिक्रांति के समर्थकों की एकजुटता इससे प्रकट होती थी, लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए समझौते यदि किए जा सकते थे तो उन्हें तोड़े भी जा सकते थे। अगला हेडिंग है त्रिगुट संधि या ट्रिपल अलायंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ बिस्मार्क औपचारिक समझौते किए हुए था और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया से एक गुप्त समझौता औपचारिक संधि कर ली थी। बिस्मार्क कितना दूरदर्शी था इसका प्रमाण उसने तभी दे दिया जब उसे सडोवा में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह परास्त करने के बाद ही उसे अपमानित न कर उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। तत्काल लाभ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में ऑस्ट्रिया की तटस्थता से मिल गया था। जर्मनी का एकीकरण स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया की परंपरागत जर्मनी राष्ट्रविदिता विरोधी नीति की पराजय थी। फिर भी जर्मनी और ऑस्ट्रियाई सम्राटों ने एक संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। 1878 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से दोस्ती का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जब बर्लिन में ऑस्ट्रिया को अकारण ही दो प्रांतों का लाभ हो गया। अब परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया, इसलिए बिस्मार्क ने संबंधों को दृढ़तर करने के लिए एक गुप्त संधि का प्रस्ताव किया। एक क्षणपूर्ण गुप्त संधि हुई जिसमें दोनों देशों ने यह तय किया कि दोनों में ही किसी एक पर रूस का हमला होने पर दूसरा साथ देगा, और यदि रूस के अतिरिक्त कोई अन्य देश इन दोनों में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा तब तक तटस्थ रहेगा जब तक रूस में शामिल न हो जाए। एक तरफ रूस से स्पष्ट रूप से समझौते किए रहना और गुप्त रूप से उसे शत्रु मानकर उसके विरुद्ध तैयारी करना, ऐसी कूटनीतिक चाल थी जो घातक सिद्ध हुई। अब बिस्मार्क ने इटली की ओर ध्यान दिया। फ्रांस और इटली कैथोलिक देश थे। इटली के एकीकरण में फ्रांस की सहायता थोड़ी एक स्तर पर मिली थी। वैसे भी फ्रांस मित्रों की तलाश में था, लेकिन उनमें मित्रता नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ्रांस की कैथोलिक पार्टी इटली में पोप के वापसी की मांग कर रहे थे, जिसे इटली की सरकार अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझ रही थी। बिस्मार्क के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने दरार को खाई में बदल देने की कला पाई थी। बर्लिन कांग्रेस में उसने फ्रांसीसी प्रतिनिधि को चुपके से प्रोत्साहित कर दिया कि उत्तरी अफ्रीका स्थित ट्यूनीशिया के प्रदेश पर वह कब्जा कर ले तो जर्मनी को कोई एतराज नहीं होगा। फ्रांस ने ऐसा ही किया, उसने ट्यूनीशिया को हड़प लिया। इंग्लैंड को इस क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने फ्रांस के विस्तार की पुष्टि कर दी। जब इटली को डर हुआ कि फ्रांस इटली का एक छोटा सा उपनिवेश त्रिपोली भी न हड़प जाए, इसलिए इस आतंक से इटली की सरकार ने फ्रांस के विरोधियों के संबंध बनाना शुरू कर दिया। बिस्मार्क तो यही चाहता था। उसने फौरन संधि का जाल फेंका और इटली स्वतः उसमें फंस गया। 1882 में द्विराष्ट्र संधि अब इटली के प्रवेश के बाद त्रिराष्ट्र संधि बन गई। यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए थी, इसलिए लेकिन चली प्रथम महायुद्ध तक। इससे बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा तो बढ़ाई ही, इटली को भी फ्रांस के आक्रमण का डर नहीं रह गया, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे मित्रों की सहायता मिलती। पोप को अब भी ऑस्ट्रिया से मदद नहीं मिल सकती थी। सबसे बड़ी बात यह कि इटली अब स्वयं बड़ी शक्ति होने का भ्रम पाल सकता था। बिस्मार्क ने मध्य यूरोप से बाल्टिक से भूमध्य सागर तक एक शक्तिशाली व्यवस्था बना ली, जिसकी एक ओर अकेले फ्रांस था तथा दूसरी ओर अवास्तविक समझौते के बावजूद वास्तव में रूस अकेला ही था। अगला टॉपिक है बिस्मार्क का मूल्यांकन। जब तक सत्ता की बागडोर बिस्मार्क के हाथ में रही, जर्मनी विभिन्न संधियों से सुरक्षित रहा। फ्रांस मित्रता विहीन महाद्वीप के तटस्थ इंग्लैंड जर्मनी से कोई खतरा महसूस नहीं करता था, और महारानी विक्टोरिया को अपनी ससुराल जर्मनी से स्नेह करती थी। अपनी सीमाओं में सुरक्षित जर्मनी प्रगति कर सकता था और समृद्धि हो रहा था, लेकिन क्या वास्तव में जर्मनी सुरक्षित था? क्या इस समृद्धि का अस्थायी आधार था? क्या इस तरह की गुप्त संधियों से जर्मनी अपनी प्रमुखता बनाए रख सकता था? बाद की घटनाओं ने इन प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर दिया। बिस्मार्क और नए सम्राट विलियम द्वितीय के बीच मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि नए सम्राट स्वयं महत्वाकांक्षी और सक्रिय शासक था तथा नाम मात्र की महानता वहन करता उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अकबर जैसे बैरम खां के प्रति कृतज्ञ होते हुए भी अपने विकास और स्वतंत्रता के मार्ग में उसे अवरोध समझता था, वैसे ही विलियम भी बिस्मार्क की उपस्थिति को प्रतिकूल समझने लगा। बिस्मार्क उसी साम्राज्य में जिसे उसने खड़ा किया था और यूरोप के सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था, अब कैसे एक गौण स्थान स्वीकार करता? उसने सम्मानपूर्वक हट जाना उचित समझा। उसने इस्तीफा देने पर प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र पंच ने एक कार्टून प्रकाशित किया। चित्रों में दर्शित झंझावत में जर्मनी रूपी जहाज को उसका चालक बिस्मार्क हटाया जा रहा था। शीर्षक था चालक का हटना, ड्रॉपिंग द पायलट। वास्तव में जर्मन जहाज का बिस्मार्क एक कुशल चालक था। 1890 में जर्मनी की स्थिति की कल्पना 30 वर्ष पूर्व असंभव थी। जर्मनी के साथ इटली का ही अभ्युदय हुआ, लेकिन इटली अभी एक गौण देश था। बिस्मार्क की कूटनीति से ही इतिहासकार म्योर के अनुसार ब्रिटेन ने भी यूरोप की स्थितियों की व्याख्या स्वीकार कर ली जो बिस्मार्क ने थी। जर्मनी के मित्र तथा फ्रांस को शांति का विरोधी माना गया। गूज के अनुसार बिस्मार्क फ्रांस को अकेला बंद रखने में अपनी नीति की सफलता समझता था, और इस काम में वह सफल भी हुआ। उसे बालकन में कोई रुचि नहीं थी। रुचि थी तो इतनी कि ऑस्ट्रिया और उस परस्पर विरोधी हितों के बावजूद जर्मनी से जुड़े रहें। वह वास्तव में एक बाजीगर था। वह इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया के रूप में ऑस्ट्रिया और रूस रूपी 5 गेंदों को इस तरह उछालता रहता था कि कम से कम 2 हरदम हवा में रहें। इनमें से कोई कभी ठीक से नहीं समझ सका कि वास्तव में बिस्मार्क चाहता क्या था। इतनी सारी सफलताओं के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि बिस्मार्क की जर्मनी ही नहीं यूरोप के भावी विनाश की पृष्ठभूमि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जिस गुप्त कूटनीति की शुरुआत की, उससे यूरोप में एक शीत युद्ध शुरू हो गया। सारा यूरोप गुटों में बट गया। शंका और तनाव के वातावरण में भी भावी युद्ध की तैयारी होने लगी। यूरोप पर बारूद का ढेर चढ़ता गया और प्रथम महायुद्ध का जब विस्फोट हुआ तो मानवता त्रस्त हो गई और बिस्मार्क भी इस असाधारण विनाश के लिए दोषी ठहराया गया। 19वीं शताब्दी की घटनाओं में तीन महारथियों का नाम जुड़ा हुआ है। पहले नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का यूरोप को शिकार बनाया। दूसरे में मेटरनिक ने इतिहास की धारा को रोकने के लिए प्रतिक्रियावादी बांध का निर्माण किया जिसके टूटने पर वह स्वयं भी गया। और अंत में बिस्मार्क ने लूथर, फिक्टे और नीत्से की परंपरा में जर्मन महान की प्रतिष्ठा में सारे यूरोप को परस्पर संकालु और आक्रामक दलों में बांटकर विनाश की ओर ढकेल दिया। बिस्मार्क की जीवनी लिखने वाले वालबुलो का मत है कि जर्मन राष्ट्र राजनीतिक कुशलता से वंचित है। इसका अर्थ है कि जर्मन राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध तक जर्मन राजनीति भी स्वयं इस कथन की पुष्टि करती है। बिस्मार्क भी जर्मनी के तत्काल हितों तक ही सीमित रहा था जबकि एक युग निर्माता भविष्य और अधिक दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखता था। बिस्मार्क उसी कोटि का महान था जिस कोटि के शासक वर्तमान और तात्कालीन स्थितियों के दबाव में एक अल्पमत के हितों को ध्यान में रखकर देश की व्यवस्थित शासन और गरिमा प्रदान करते थे। ऐसा देश अपने को अग्रणी मानता है लेकिन भविष्य में उसी देश को अपने उसी नायक की नीतियों का भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हिटलर के निशंस नाथसी राज्य को भोगने और आज विभाजित जर्मनी को एक वास्तविक रूप में मानने के लिए बिस्मार्क का जर्मनी से पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। हमारा अगला हेडिंग है किपल एंटेंट अर्थात किपल अतातांत। दीर्घकाल में एक शत्रु से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होने के बाद दूसरे शत्रु से भी मित्रता की संभावना बढ़ गई। इंग्लैंड और रूस के संबंध कटु थे। एशिया में रूस और जापान के संबंध बिगड़ते जा रहे थे और जापान से इंग्लैंड ने 1902 में संधि कर ली थी। जापान ने रूस को 1905 के युद्ध में पराजित कर आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की थी। रूस की नज़र में जापान के इस साहस के कारण इंग्लैंड से उसकी मित्रता भी थी। उत्तरी सागर में इंग्लैंड की मछली मारने वाली नौका पर रूसी जहाजी बेड़े ने गोलियां चलाई और विस्फोट होते होते बचा था। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड और रूस में संबंध सुधार की संभावना बहुत दूर थी लेकिन स्थितियां तेजी से बदल गईं। फ्रांस और रूस के संबंध तेजी से बढ़ रहे थे। द्विराष्ट्रीय संधि मजबूत होती जा रही थी। फ्रांस के दो मित्र रूस और इंग्लैंड में संबंध तनावपूर्ण होने से बड़ी कठिनाई थी। उत्तरी सागर के मामले में रूस ने खेद प्रकट किया और उसे क्षतिपूर्ति कर दी। इससे एक अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दोनों देशों में वार्ता शुरू हुई और इंग्लैंड तथा फ्रांस में हुए समझौते के आधार पर इन दोनों के बीच समस्याओं के निदान की बात भी सोची जाने लगी। दोनों देशों के बीच संघर्ष के मुद्दे एशिया में भी थे। समस्या प्रभाव क्षेत्र की थी। इस विषय में समझौता हो गया। रूस ने अफगानिस्तान और इंग्लैंड का प्रभाव मान लिया। इससे एक कांटा निकल गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से डरती थी। अफगानिस्तान उसके लिए रूस और भारत के बीच का देश था जहां रूस का प्रभाव न बढ़ने लगा। इसके लिए इंग्लैंड सब कुछ करने के लिए तैयार था। रूसी आश्वासन ने उसे संतोष हुआ। इस प्रकार तिब्बत ने भी रूस का भय बना रहा। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत पर रूसी प्रभाव समाप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया था। यह तय हुआ कि रूस और इंग्लैंड दोनों ही तिब्बत में प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे और वह एक तटस्थ बिचौलिए प्रदेश रहेगा। इसी तरह ईरान उत्तरी सीमा पर रूसी जमाव रहता था और दक्षिण में फारस की खाड़ी में इंग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र था। यह निश्चित हुआ कि ईरान के उत्तरी हिस्से पर रूस का और दक्षिण हिस्से पर इंग्लैंड का प्रभाव रहेगा। इस तरह समस्याओं पर एकमत हो जाने के बाद 1907 में दूसरा आश्चर्य यह हुआ कि आंग्ल रूसी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। अब इंग्लैंड फ्रांस का दोस्त था और रूस का भी। फ्रांस और रूस मित्र थे ही। तीनों देश अलग अलग समझौते कर चुके थे। ऐसी स्थिति में तीनों के बीच एक समान समझौता हो जाना स्वाभाविक था। त्रिगुट संधि के समांतर एक त्रिराष्ट्र समझौता हो गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इतिहासकार बर्न्स के अनुसार 1990 से 1890 और 1907 के बीच एक कूटनीतिक क्रांति हुई जिसमें बिस्मार्क की सफलताओं पर पानी फेर दिया। फर्क यही था कि पहले त्रिगुट के देशों में सैनिक संधि थी और दूसरे गुटों के बीच मित्रतापूर्ण सद्भाव। ऐसा ही समय आया जब पहला गुट टूट गया। इटली की पूर्णतः मांग के रास्ते ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, इसलिए दोनों के बीच संधि स्थायी नहीं हो सकी। बिस्मार्क के पतन के बाद ही इटली और फ्रांस के बीच न केवल विवाद समाप्त होने हो गए थे बल्कि दोनों के बीच सहयोग भी बढ़ा था। यह भी तय हो गया कि यदि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो इटली तटस्थ रहेगा। अफ्रीकी उपनिवेश में भी सहयोग देने लगा था और दूसरी ओर बालकन से लेकर इटली और रूस में आपसी समझदारी बढ़ रही थी। श्रोताओं, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से अध्ययन किया बिस्मार्क की विदेश नीति, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। धन्यवाद।